झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए तेरे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے بچوں بچوں کی ٹریننگ کے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں بڑے اچھے آئے اللہ آپ کو بھی اچھا کر دے مجھے بھی اچھا کر دے ہم سب اچھے ہو جائیں اور اچھا وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو اللہ جس کو پسند کرے اللہ جس کو ناپسند کرے وہ اچھا نہیں ہے تو پیارے بچوں آج ہم اس عنوان پر کچھ سیکھیں گے کسی کو تکلیف مت دیجئے ایک نیک آدمی نے کسی نون مسلم کو قرضہ دیا نے جو مسلمان نہیں تھا اس کو نون مسلم بھی کہتے ہیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں اور اب وہ قرضہ لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے آئے وہ نیک شخص اب گھر کے پاس پہنچے تو کوئی کیچڑ تھی وہاں کیچڑ میں آپ کی جوتی مبارک جو تھی کیچڑ اس میں لگ گئی تو آپ نے وہ کیچڑ کو جب جھاڑا پاؤں کو جھٹکتے نا پاؤں کو جھٹکا تو وہ جوتے سے کیچڑ اڑ کر اس غیر مسلم کے گھر کی وہ دیوار کو لگ گئی آپ کو فکر ہو گئی فکر میں لگ گئے کہ اب میں کیا کروں کیچڑ کو میں صاف کرتا ہوں تو یہ چونا وغیرہ جو لگا ہوا ہے دیوار کا وہ اکھڑے گا مٹی اکھڑے گی اور اگر کیچڑ کو صاف نہیں کرتا تب بھی یہ دیوار خراب ہوئی جا رہی ہے تو مجھے کرنا کیا چاہیے تو اسی سوچ میں تھے کہ وہ غیر مسلم جس نے قرضہ لیا تھا اس نے دیکھ لیا یہ قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں یہ تھوڑا گھبرا گیا بار آ کر وہ سوری کرنے لگا کہ ابھی میرے پاس تو انتظام نہیں ہے پیسوں کا بعد میں میں آپ کو دے دوں گا اس طرح وہ کرنے لگا تو اس نیک شخص نے کہا کہ بھائی اب قرضہ تو ہوتا رہے گا اپنی جگہ پر میں تو پریشان ہوں کہ میرے پاؤں کے جوتے سے اڑ کر کیچڑ تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے صاف کرتا ہوں تو مٹی چونا کچھ گرتا ہے جھڑتا ہے دبا پڑتا ہے اور اگر نہیں صاف کرتا ہوں تب بھی آپ کی دیوار گندی ہو گئی ہے تو اسی میں پریشانی میں ہوں اس غیر مسلم نے جب یہ سنا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ حضور بس آپ اس کیچڑ کو بعد میں صاف ہوتی رہے گی چھوڑیے میرے دل کی کیچڑ میرے دل کی گندگی یہ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا لیجئے لہذا وہ غیر مسلم یعنی نون مسلم اس نیک شخص کا تقوی پرہیزگاری اور خوف خدا دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گیا یعنی مسلمان ہو گیا پیارے پیارے بچوں جانتے ہیں وہ نیک آدمی کون تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے جن कि हम नमाज और बहुत सारे मसाइल जो होते हैं ना, इनमें इनकी हम पैरवी करते हैं, तो इस वजह से हम हनफी कहलाते हैं। ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने, ये सहाबाए किराम के दौर में, सहाबाए बाद सहाबाए किराम को इन्होंने देखा है, इसलिए ये इस्तिलाहन ये ताबेई कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे कि बाद सहाबाए किराम की ये सोबत में रहे। इनका नाम नोगमान था, वालिद का नाम साबित, नोगमान बिन साबित, अबू हनीफा इनकी कुनियत। ये मशहूर इमाम आजम अबू हनीफा से हैं। अल्लाह करीम इनकी बरकतें हमको नसीब फरमाए। ये कितने खौफे खुदा वाले थे, वो कीचड़ लग गई। अब हमको इससे पता चला ना कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी की चीज को खराब करके भी तकलीफ दी जा सकती है, किसी के कपड़े खराब कर दिए उसको यूं भी तकलीफ हो सकती है। बाद लोग कपड़ों पर रंग उड़ाते हैं, कभी थूक डाल देते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं तो बाज लोग पान खाकर उसका पीक बोलते हैं, पान के थूक को वो कोनों में डाल देते हैं, कोने रंगीन हो जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो पेन या पेंसिल लेकर दीवारों पर निशाना डालते रहते हैं, कोई लिखते रहते हैं, तरह दीवार गंदी होती है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, खासकर किसी की गाड़ी पर, किसी की छत पर कचरा नहीं डालना चाहिए। अपना घर है, दूसरे की छत नजर आ रही है तो उसमें कोई कचरा फेंक दिया, छिलका फेंक दिया केले का या कोई भी ऐसी चीज, तो किसी के उसमें, किसी की छत पर, किसी के घर में, किसी के घर के आगे भी कोई कचरा वगैरह हमको नहीं डालना चाहिए, कि इससे ज़ाहिर दूसरों को ईजा होती है। और जब दूसरों को ईजा देना तो ये तो अच्छा काम नहीं है। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फकद आदानी व मन आदानी फकद आदल्ला। यानी जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी यानी तकलीफ दी, उसने मुझे ईजा यानी तकलीफ दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह पाक को ईजा दी। देखो कितनी मतलब है कि खौफ की बात है कि बंदे को हम तकलीफ दें, मुसलमान को तकलीफ दें, तो ये कितनी दूर जाकर इसका मामला है। फिर मजीद अल्लाह ताला को तकलीफ देना, तो ये इसके ताल्लुक से पारा 22 सूरतुल अहजाब आयत नंबर 57 में इरशाद होता है, इन्नल्लदीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुम لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक जो ईजा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। हम अल्लाह पाक की नाराजगी से उसकी पनाह पकड़ते हैं, पनाह में आते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज ना हो, हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो। या अल्लाह हमें तौफीक दे, हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की तकलीफ का हम सबब ना बने, हमसे किसी को तकलीफ ना हो। खुदाया किसी का ना दिल में दुखाऊं, अमा तेरी अबदी अजाबों से पाऊं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कभी किसी को तकलीफ हो जाए हमारी जात से तो फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, यानी सॉरी कर देना चाहिए। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि किसी को तकलीफ ना दीजिए। तो सवालत करेंगे, माशा रमजान पहला सवाल करेंगे, क्या बात
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अमीरा अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बसा औकात बच्चे मिल मिलकर कुछ खा रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे लालच की वजह से बड़े बड़े हाथ मार रहे होते हैं, यानी जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। फिर उनमें क्या होता है कि दूसरों का हिस्सा भी वही खा लेते हैं, फिर ये भी तकलीफ में आएगा।
हाँ, इस तरह ये देखे, ये लालच और हिर्स की अलामत है। अब खाना जैसे बहुत है और सबका पेट भर जाएगा, जब तो दूसरे को इससे तकलीफ तो नहीं होगी। और खाने के टाइम पर ऐसा होता है कि यूं सब मसरूफ होते हैं और इतना तवज्जो नहीं होती। अलबत्ता ये कि इस तरह हिर्स करना और बड़े बड़े निवाले खाना, ये है मतलब खुद अपने को तकलीफ में डालने वाला काम है।
जी
इससे कम चबाएंगे तो जो हाजिम लुआब डाइजेस्टिव जो एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है मुंह में, तो वो एक वो लुआब निकलता है, एक एक वाटर निकलता है, तो वो उसमें मिक्स होता है जिससे वो खाना हजम होता है। तो छोटा निवाला होगा और हम अच्छी तरह इसको चबाएंगे तो वो हाजिम लुआब वो थूक जो है वो इसमें मिक्स होगा, वो पेट में जाएगा तो इस तरह वो जल्दी हजम हो जाएगा, तो ये फायदा ज्यादा करेगा और बीमारियां इससे दूर रहेंगी। तो इस तरह ये के इस तरह नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े निवाले और जल्दी जल्दी खाना, ये जो देखेगा कोई समझदार होगा तो वो भी उस पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा, कैसा लालची बच्चा है। तो इत्मीनान से अपनी तरफ से खाएं। हाँ बहुत सारी चीजें जैसे मिक्स हैं तो अब कुछ इधर रखा हुआ है, जैसे समझो ड्राई फ्रूट है तो इधर पिस्ते हैं, तो इधर बादाम है, तो इधर काजू है, तो अब ये इन चीजों को उठाने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, एक ही तरह की चीज है तो अपनी तरफ से खाएंगे, इधर उधर हाथ मारना ये मना है, अच्छा नहीं है। दोबारा लेके हम ज्यादा खा लें और दूसरे बस महरूम रह जाए, दूसरे ना खाने पाए, ये अच्छा नहीं है। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हुए, अल्लाह के नेक बंदे हुए, इनके पास एक बार मेहमान आ गए और सबके लिए वो रोटियों रोटियां पेश की गई। अब रोटियां जो थी उसके टुकड़े करके वो मेहमानों के आगे पेश की गई, अब ज्यादा रोटियां थी नहीं तो इसलिए वो चराग वहां से वो उठा दिया गया। अब मेहमान अंदर ही में दस्तरखान पर बैठ गए। अब कुछ देर के बाद ये सोच करके चलो सब खा चुके होंगे, चराग लाया गया तो रोटी के सारे टुकड़े जो थे वो थाल में मौजूद थे। ईसार के जज्बे के तहत एक लुकमा भी किसी ने ना खाया था कि ऐसा ना हो कि मैं अंधेरे में ज्यादा खा जाऊं और मेरा कोई और मुसलमान भाई भूखा रह जाए, तो किसी ने नहीं खाया। तो ये बुजुर्गों का एक अंदाज था कि ईसार के दूसरा भले खा ले अपनी जरूरत की चीज, जिसकी ख्वाहिश है वो दूसरे पर इशार करना, जैसे कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बख्शिश निशान है जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर उस ख्वाहिश को रोक कर अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दे तो अल्लाह पाक उसे बख्श देता है। देखा कितनी बड़ी प्यारी फजीलत है, बख्शिश की बिशारत है। तो इशार करना चाहिए, इसको इशार बोलते हैं। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
میرا نام افنان ہے پیارے امیر سنت میرا سوال یہ ہے کہ بچے جب اسکول یا مدرسے سے گھر آتے ہیں تو بہت شور مچاتے ہیں تو کیا یہ بھی تکلیف میں آئے گا
ظاہر اس سے تکلیف تو ہوگی نا بچے اگر شور مچاتے ہیں بچوں کو خود تکلیف نہیں ہوتی इनको समझ नहीं आती है लेकिन जो बड़े होते हैं ना अब किसी का सर दुख रहा है किसी को नींद चढ़ी हुई है कोई बेचारा बुखार होए बूढ़े लोग जो होते हैं ये ज्यादातर इनको बीमारियां होती है तो इनको ये शोर की आवाजों से परेशानी होती है तकलीफ होती है तो इस तरह बच्चों को चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ और चुपचाप खामोशी से वो गुजरें और घर अपने जाए हो करके शोर मचाते हैं वो छुट्टी की घंटी बजती है ना इस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। और पड़ोसियों को भी इससे तकलीफ होगी, घर के पास शोर मचाएंगे तो जो दूसरे पड़ोसी हैं उनको भी तकलीफ होगी। और हदीस पाक में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को हरगिज तकलीफ ना दे। अब जैसे कि पड़ोसियों को किस तरह तकलीफ दी जा सकती है, मसलन उसके दरवाजे के आगे कचरा डाल देना, उनके दरवाजे के पास शोर मचाना, बच्चों का खासकर सोने के टाइमिंग में शोर करना, किसी के घर में झांकना ये भी जरूर उसके लिए तकलीफ का बाइस होता है। अगर वो देख ले तो उसको परेशानी होगी, या किसी ऐसी पोजीशन में कि वो नहीं चाहता कि कोई देखे उसी पोजीशन, कपड़े बदल रहा है कोई और देख लिया तो ये उसको बुरा लगेगा ना, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। इसी तरह एक ही बिल्डिंग में रहने की सूरत में सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर जोर से पांव पटकते हुए चढ़ जा, दब 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 करके चढ़ते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये आवाज, जूतों की आवाज है ना, ये पसंद नहीं थी। जूते इस तरह के हों जिसमें वो आवाज भी ना हो और चले भी तो तहजीब के साथ और इस अंदाज से चले कि जूतों की चटाख पटाख की आवाजें ना आए। इस तरह बाजू बाद ऊंची आवाज है टेप रिकॉर्डर या डेक वगैरह बजाना, ये तो पुरानी चीजें हो गई। इसी तरह मदनी चैनल भी आप ऑन करें तो उसकी आवाज भी ऐसी ना रखें कि वो सारा मोहल्ला सुन रहा हो और कोई सो ना पा रहा हो, वो अपने घर की चार दीवारी में। अब इसमें भी कोई घर का फर्द है वो सोना चाहता है तो फिर ये कि आप बोले नहीं मेरा तो मदनी चैनल देखने का टाइम है, मैं तो चलाऊंगा, घर वालों को तकलीफ हो रही है, तो फिर उतनी देर तक आपको सब्र करना होगा या इतनी धीमी आवाज रखे इनकी मंजूरी से घर वालों की कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ नहीं देना है। इसी तरह किसी के बच्चों को मारना झाड़ना, अपने भाई बहनों को मार पीट करना और उसको तंग करना, ये सब ज़रे तकलीफ की चीजें, अल्लाह पाक हमको किसी को तकलीफ ना दे ऐसा बना दे। आमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम मोहम्मद हारून रजा अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि बाज़ूकात बच्चे ऐसा मजाक करते हैं कि दूसरे को तकलीफ होती है, जैसे अगर कोई बैठने जा रहा है तो उसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है और उस पर हंसा बल्कि कहका लगाया जाता है, तो इसमें कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें।
तो भाई तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि उसको चोट लगेगी, अल्लाह ना करे कमजोरी हुई, बाजों की हड्डियां कमजोर होती है, हड्डी टूट भी सकती है और बेचारा उम्र भर के लिए मोहताज हो सकता है। फिर ये कि अचानक ऐसा होने से उसको घबराहट भी होगी, अब दिल कमजोर है तो दिल का भी अटैक भी हो सकता है कि क्या हो गया, अचानक बंदा डर सकता है, तो ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो बिल्कुल ख्वाब में भी ऐसा एक काम नहीं करना चाहिए कि किसी के आगे से सीट हटा ली जाए, कुर्सी हटा ली जाए, वो बेचारा धड़ाम से गिरे। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, बाज और भी तकलीफों के तरीके होते हैं कि किसी की डोर बेल बजा कर बच्चे का भाग जाना, ये भी जरा तकलीफ होगी उसको, वो आएगा निकलेगा कौन है क्या है, फिर वो परेशान होगा। इस तरह सोने वाले बच्चे होंगे तो आपस में एक दूसरे की चारपाई इधर उधर रख देना वो ढूंढता रहे, या किसी को कमरे या बाथरूम में बंद कर देना, या डरावनी आवाजें निकालना या डरावनी शक्ल बनाकर उसको मतलब खौफजदा कर देना, डरा देना, वॉशरूम का पानी बंद कर देना, दोस्तों की मंडलियों दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के झुरमट में किसी का मजाक उड़ा कर उस पर यानी के फिक्रे कसकर या हुटिंग करके उसको तकलीफ देना, किसी के सर पर अचानक चपत मार के छुप जाना, इसी तरह किसी को बुरा भला कहना और उसको छेड़कर फिर बोलना कि अगर वो नाराज हो यार क्या इतनी सी बात पर तुम नाराज हो जाते हो, नहीं बल्कि अब छेड़ना ऐसा छेड़ना कि जिससे नाराज होता है वो हमें करना नहीं है। भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो और तमस्खुर भी उड़ाना छोड़ दो, तमस्खुर माने मजाक। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे।